ब्रा। अतीत में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कई बार और विभिन्न तरीकों से हमारे पूर्वजों से बात की, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है, जिसे उसने सभी चीजों का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और जिसके माध्यम से उसने ब्रह्मांड बनाया है। पुत्र ईश्वर की महिमा की चमक और उसके अस्तित्व का सटीक प्रतिनिधित्व है, जो अपने शक्तिशाली शब्द से सभी चीजों को कायम रखता है। पापों के लिए शुद्धिकरण प्रदान करने के बाद वह स्वर्ग में महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठ गया। इस प्रकार वह स्वर्गदूतों से उतना ही श्रेष्ठ हो गया जितना उसे विरासत में मिला नाम उनसे श्रेष्ठ है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग बना रहेगा और धर्म तेरे राज्य का राजदंड होगा। तूने धर्म से प्रेम और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तुझे आनंद के तेल से अभिषेक करके यह कहकर तेरे साथियों से ऊपर ठहराया है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं। लेकिन कौन सेवा करने वाली आत्माएं हैं जिन्हें उन लोगों की सेवा के लिए भेजा जाता है जिन्हें मोक्ष प्राप्त होगा? आदमी का बेटा, इसलिए हमें जो कुछ हमने सुना है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि हम भटक न जाएं। क्योंकि यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया संदेश बाध्यकारी था, परमेश्वर द्वारा मूसा के माध्यम से दी गई वाचा और हर उल्लंघन और अवज्ञा को उसकी उचित सजा मिली, तो ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करने से हम कैसे बचेंगे? यह मुक्ति, जिसकी घोषणा सबसे पहले प्रभु मसीह ने की थी, उसकी पुष्टि हमें उन लोगों द्वारा की गई जिन्होंने उसे सुना था। परमेश्वर ने चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न चमत्कारों और उसकी इच्छा के अनुसार वितरित पवित्र आत्मा के उपहारों के द्वारा भी इसकी गवाही दी। तूने उसे, मनुष्य के पुत्र यीशु को, स्वर्गदूतों से थोड़ा कमतर बनाया, तूने उसे महिमा और सम्मान का ताज पहनाया और सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। लेकिन हम यीशु को देखते हैं जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया था, अब उसे महिमा और सम्मान का ताज पहनाया गया है क्योंकि उसने मृत्यु का सामना किया था ताकि भगवान की कृपा से वह जीवित रह सके। सभी के लिए मौत का स्वाद चखना। कई बेटों को महिमा में लाने के लिए यह उचित था कि भगवान, जिनके लिए और जिनके माध्यम से सब कुछ मौजूद है, उन्हें पीड़ा के माध्यम से उनके उद्धार के लेखक को परिपूर्ण बनाना चाहिए, एक ही परिवार के हैं, इसलिए यीशु को उन्हें भाई कहने में कोई शर्म नहीं है। संकलक की टिप्पणी, जिन लोगों को यीशु ने भाई कहा था, वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने पाप से उनकी मृत्यु के बाद मसीह की मृत्यु में विसर्जन बपतिस्मा के द्वारा दफनाया गया था और मसीह के शरीर उनके चर्च में डाल दिया था। टिप्पणी समाप्त करें। चूंकि बच्चे मांस और खून के होते हैं, इसलिए वह भी उनकी मानवता में शामिल हो गया ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वह उसे नष्ट कर सके जिसके पास मृत्यु की शक्ति है, अर्थात शैतान, और उन लोगों को मुक्त कर सके जो अपने पूरे जीवन में उनकी गुलामी में थे, मृत्यु का भय। निश्चय ही वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहीम के वंशजों, विश्वासियों की सहायता करता है। इस कारण से उसे हर तरह से अपने भाइयों की तरह बनाना पड़ा ताकि वह भगवान की सेवा में एक दयालु और वफादार महायाजक बन सके और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। चूंकि उसने स्वयं परीक्षा में पड़ने पर कष्ट उठाया, इसलिए वह उन लोगों की सहायता करने में सक्षम है जिनकी परीक्षा होती है। इसलिए पवित्र भाइयों, जो स्वर्गीय बुलाहट में भाग लेते हैं, अपने विचारों को यीशु प्रेरित और महायाजक, जिसे हम स्वीकार करते हैं, पर केंद्रित करें। वह अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वासयोग्य था, जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वासयोग्य था। यीशु को मूसा से अधिक आदर के योग्य पाया गया है, जैसे घर बनाने वाले का आदर घर से भी अधिक होता है। क्योंकि हर घर को कोई न कोई बनाता है, परंतु हर चीज का बनाने वाला परमेश्वर है। मूसा परमेश्वर के पूरे घर में एक सेवक के रूप में वफादार था और भविष्य में जो कहा जाएगा उसकी गवाही देता था। परंतु मसीह परमेश्वर के घर पर पुत्र के समान विश्वासयोग्य है। यदि हम अपने साहस और उस आशा पर कायम रहें जिस पर हम गर्व करते हैं, तो हम उसका घर हैं। उन्हें सुनो। आज यदि तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि तुमने विद्रोह के समय किया था और जंगल में परीक्षा के समय किया था, जहां तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा और परखा और 40 वर्ष तक देखा कि मैं क्या करता हूँ। इसी कारण मैं उस पीढ़ी पर क्रोधित हुआ और मैंने कहा, उनके मन सदैव भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरी चाल नहीं पहचानी, इसलिए मैंने अपने क्रोध में शपथ खाकर घोषणा की, वे इसराइली कभी भी मेरे विश्राम कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, ध्यान रखो, तुम में से किसी ईसाइयों का दिल पापपूर्ण अविश्वासी न हो जो भटक जाए जीवित परमेश्वर से। परंतु जब तक आज का दिन कहा जाता है, तब तक प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, ताकि तुम में से कोई भी पाप के छल से कठोर न हो जाए। यदि हम उस विश्वास को अंत तक मजबूती से कायम रखें जो हमें पहले था, तो हम मसीह में हिस्सा लेने आए हैं। इसलिए चूंकि उसके विश्राम अनंत जीवन में प्रवेश करने का वादा अभी भी कायम है, आइए हम सावधान रहें कि आप में से कोई भी इससे वंचित न रह जाए। क्योंकि हमने भी सुसमाचार, परमेश्वर के पुत्र का जीवन, मृत्यु, गाड़ना, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का प्रचार किया है, जैसा उन्होंने किया था, परंतु जो संदेश उन्होंने सुना वह उनके लिए कोई मूल्य का न था, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ न जोड़ा। अब भी बाकी है कि कुछ लोग उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, और जिनको पहले सुसमाचार सुनाया गया था, जिन्होंने आज्ञा मानी और फिर लौट गए, अवज्ञा के कारण भीतर न गए। इसलिए आइए हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि कोई भी उनकी अवज्ञा के उदाहरण इसराइलियों का अनुसरण करके गिर न जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, वह आत्मा और आत्मा जोड़ों और गूदे को विभाजित करने तक भी घुस जाता है, यह हृदय के विचारों और दृष्टिकोणों का न्याय करता है। समस्त सृष्टि में कुछ भी ईश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। जिसको हमें हिसाब देना है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और खुला है। संकलक की टिप्पणी, कनान के रास्ते में इसराइलियों ने ईश्वर को मजबूती से नहीं पकड़ा, इसलिए वे अपनी सांसारिक वादा की गई भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी तरह स्वर्ग की ओर जाने वाले ईसाई जो ईश्वर को मजबूती से नहीं पकड़ते, वे अपनी आध्यात्मिक वादा की गई भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, शब्द सुसमाचार ईश्वर की आत्मा को विभाजित करेगा जो उसने मनुष्य में डाला था, जो मृत्यु के समय उसके पास लौट आता है, दुष्ट और विद्रोही मनुष्य की शाश्वत आत्मा से जो मृत्यु के समय शैतान और उसके स्वर्गदूतों के साथ अनंत मृत्यु में चला जाता है। टिप्पणी समाप्त करें। यीशु मसीह हमारे महायाजक। हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र। आइए हम उस विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखें जो हम मानते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति न रख सके, परंतु हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारी ही तरह हर तरह से प्रलोभित हुआ है, फिर भी निष्पाप है। आइए फिर हम आत्मविश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, ताकि हम दया प्राप्त कर सकें और जरूरत के समय में हमारी मदद करने के लिए अनुग्रह पा सकें। प्रत्येक महायाजक को मनुष्यों में से चुना जाता है और भगवान से संबंधित मामलों में उनका प्रतिनिधित्व करने, पापों के लिए उपहार और बलिदान देने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उन लोगों के साथ नम्रता से व्यवहार करने में सक्षम है जो अज्ञानी हैं और भटक रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं कमजोरी के अधीन है। यही कारण है कि उसे अपने पापों के साथ साथ लोगों के पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाना पड़ता है। यह सम्मान कोई अपने ऊपर नहीं लेता, उसे परमेश्वर द्वारा बुलाया जाना चाहिए, जैसे हारून था। इसलिए मसीह ने भी महायाजक बनने का गौरव अपने ऊपर नहीं लिया। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बन गया हूँ। पृथ्वी पर यीशु के जीवन के दिनों में उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर और आंसुओं के साथ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं और प्रार्थनाएं की जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, और उसकी श्रद्धापूर्ण अधीनता के कारण उसकी बात सुनी गई। यद्यपि वह एक पुत्र था, उसने जो कुछ सहा उससे आज्ञाकारिता सीखी और एक बार पूर्ण हो जाने पर वह उन सभी के लिए शाश्वत मोक्ष का स्रोत बन गया जो उसकी आज्ञा मानते थे और भगवान द्वारा मलिकिसिदक के क्रम में महायाजक के रूप में नामित किया गया था। इसलिए आइए हम मसीह के बारे में प्रारंभिक शिक्षाओं को छोड़ दें और परिपक्वता की ओर बढ़े, न कि उन कार्यों से पश्चाताप की नींव डालें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और ईश्वर में विश्वास, बपतिस्मा के बारे में निर्देश, हाथ रखने, पुनरुत्थान के बारे में निर्देश देते हैं। मृत और शाश्वत न्याय। भगवान ने अनुमति दी तो हम ऐसा करेंगे। यह उन लोगों के लिए असंभव है जो एक बार प्रबुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने स्वर्गीय उपहार का स्वाद चखा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा में हिस्सा लिया है, जिन्होंने ईश्वर के वचन की अच्छाई और आने वाले युग की शक्तियों का स्वाद चखा है। अगर वे दूर हो जाते हैं, पश्चाताप के लिए वापस लाया जाए, क्योंकि अपने नुकसान के लिए वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और उसे सार्वजनिक अपमान के अधीन कर रहे हैं। वह भूमि जो अक्सर अपने ऊपर होने वाली वर्षा को पी जाती है और जो उन लोगों के लिए उपयोगी फसल पैदा करती है जिनके लिए उस पर खेती की जाती है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जो भूमि कांटे और ऊंटक तारे उत्पन्न करती है वह बेकार है और शापित होने के खतरे में है। अंत में इसे जला दिया जाएगा। संकलक की टिप्पणी, अपनी आध्यात्मिक भूमि पर खेती करना ईश्वर के वचनों के निरंतर अध्ययन और आध्यात्मिक भाइयों के साथ चर्चा से पूरा होता है, क्योंकि यह भय और कांप के साथ आपके उद्धार का कार्य कर रहा है। टिप्पणी समाप्त करें। नई वाचा। प्रभु ने कहा कि मैं एक नई वाचा बनाऊंगा जिसमें मैं अपने नियमों को उनके दिमाग में डालूंगा और उन्हें उनके दिलों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। इस वाचा को नया कहकर उसने पहली वाचा को अप्रचलित बना दिया है, और जो अप्रचलित और पुराना है वह जल्द ही गायब हो जाएगा। अब पहली वाचा में पूजा के लिए नियम और एक सांसारिक अभयारण्य भी था। जब मसीह उन अच्छी चीजों के महायाजक के रूप में आए जो पहले से ही यहाँ हैं, तो वह उस महान और अधिक परिपूर्ण तंबू से गुजरे जो मानव निर्मित नहीं है, अर्थात इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है। उसने अपने रक्त के द्वारा एक ही बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत मुक्ति प्राप्त की। मसीह, जिसने शाश्वत आत्मा के माध्यम से स्वयं को परमेश्वर को बेदाग अर्पित कर दिया, हमारे विवेक को मृत्यु की ओर ले जाने वाले कार्यों से शुद्ध किया, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकें। इस कारण से मसीह एक नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि जो लोग बुलाए गए हैं वे वादा किया हुआ शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त कर सकें। अब जब वह पहली वाचा के तहत किए गए पापों से उन्हें मुक्त करने के लिए फिरौती के रूप में मर गया है, जब मूसा ने सब लोगों को व्यवस्था की एक एक आज्ञा सुना दी, तब उसने बछड़ों का लोहू, जल, लाल ऊन और जूफा की डालियां समेत लिया और उस पुस्तक पर और सारी प्रजा पर छिड़क दिया। उसने कहा, यह वाचा का खून है जिसे निभाने की आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है। परंतु मसीह ने किसी मानव निर्मित पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया जो केवल सच्चे पवित्र स्थान की नकल था, उसने स्वयं स्वर्ग में प्रवेश किया, अब हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होने के लिए। वह युग के अंत में स्वयं के बलिदान द्वारा पापों को दूर करने के लिए एक बार प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार मनुष्य की नियति एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना तय है, उसी प्रकार कई लोगों के पापों को दूर करने के लिए मसीह को एक बार बलिदान किया गया था, और वह पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु जो उसकी बाट जोहते हैं उनका उद्धार करने के लिए दूसरी बार प्रकट होगा। कानून आने वाली अच्छी चीजों की छाया भर है, वास्तविकताएं नहीं। पहले उसने कहा, बलिदान और भेंट, होमबलि और पापबलि तूने न चाहा, और न तू उनसे प्रसन्न हुआ, हालांकि व्यवस्था के अनुसार उन्हें बनाना आवश्यक था। तब उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। वह दूसरी और बेहतर वाचा स्थापित करने के लिए पहली वाचा को अलग रखता है। उस इच्छा से हम यीशु मसीह के शरीर के बलिदान के माध्यम से हमेशा के लिए पवित्र हो गए हैं। फिर वह आगे कहता है, मैं उनके पापों और अधर्म कार्यों को फिर कभी याद नहीं रखूंगा। जहां इन्हें माफ कर दिया गया है, वहां अब पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है। इसलिए आइए हम पूरे विश्वास के साथ, सच्चे दिल से, दोषी विवेक से शुद्ध करने के लिए अपने दिलों पर छिड़काव करके और अपने शरीर को शुद्ध पानी से धोकर भगवान के करीब आएं। आइए हम उस आशा को दृढ़ता से थामे रहें जिसका हम दावा करते हैं, क्योंकि जिसने वादा किया है वह वफादार है। आइए विचार करें कि हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। आइए हम एक साथ मिलना न छोड़े, जैसा कि कुछ लोगों को करने की आदत होती है, लेकिन आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और जब आप उस दिन को करीब देखते हैं तो और भी अधिक। यदि हम ईसाइयों जानबूझकर बिना रुकने की इच्छा के सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी पाप करते रहते हैं, मसीह का सुसमाचार दफनाने विसर्जन द्वारा उनके रक्त में, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं बचता, बल्कि केवल एक न्याय की भयावह प्रतीक्षा और प्रचंड आग जो परमेश्वर के शत्रुओं को भस्म कर देगी। जिस किसी ने मूसा की व्यवस्था को अस्वीकार किया, वह दो या तीन गवाहों की गवाही पर बिना दया के मर गया। आप क्या सोचते हैं कि वह व्यक्ति कितनी अधिक गंभीरता से दंड का पात्र है जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा है, जिसने उसे पवित्र करने वाली वाचा के रक्त को अपवित्र वस्तु माना है, और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा, और फिर प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। प्रकाश प्राप्त करने के बाद उन शुरुआती दिनों को याद करें, जब आप कष्टों का सामना करते हुए एक महान प्रतियोगिता में डटे रहे। कभी कभी आपको सार्वजनिक रूप से अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, अन्य समय में आप उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। तुमने जेल में बंद लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और अपनी संपत्ति की जब्ती को खुशी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे पास बेहतर और स्थायी संपत्ति है। इसलिए अपना आत्मविश्वास मत गवाओ, इसका भरपूर इनाम मिलेगा। आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है, ताकि जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर लें, तो आपको वह प्राप्त हो जो उसने वादा किया है। क्योंकि अब थोड़े ही समय में जो आने वाला है वह आएगा और विलंब न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हटे तो मैं उससे प्रसन्न न होऊंगा। परंतु हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और बचा लिए जाते हैं। काम पर विश्वास। विश्वास का अर्थ है हम जो आशा करते हैं उस पर निश्चित होना, निश्चितता, शायद नहीं या मुझे लगता है, और जो हम नहीं देखते उसके प्रति निश्चित होना। हम समझते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर के आदेश पर हुआ था, दृश्य से नहीं। विश्वास के साथ हाबिल ने परमेश्वर को कैन से बेहतर बलिदान अर्पित किया। एक धर्मी मनुष्य के रूप में उसकी सराहना की गई। हनोक को इस जीवन से छीन लिया गया था, उसे मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने उसे छीन लिया था। नूह ने पवित्र भय में अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया और विश्वास से आने वाली धार्मिकता का उत्तराधिकारी बन गया। इब्राहिम ने आज्ञा मानी और परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चला गया, न जाने वह कहां जा रहा था। इब्राहिम ने इसहाक और याकूब की तरह एक अजनबी की तरह वादा किए गए देश में अपना घर बनाया, जो तंबू में रहता था। इब्राहिम पिता बनने में सक्षम था क्योंकि वह उसे वफादार मानता था जिसने वादा किया था। इब्राहिम ने वादों के पुत्र इसहाक को यह तर्क देकर बलिदान दिया कि परमेश्वर उसे मृतकों में से जीवित कर सकता है। इसहाक ने याकूब और एसाव को उनके भविष्य के संबंध में आशीर्वाद दिया। याकूब जब वह मर रहा था, उसने यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीर्वाद दिया और आराधना की। यूसुफ ने मिस्र से इसराइलियों के पलायन के बारे में बात की और अपनी हड्डियों के बारे में निर्देश दिए। मूसा के माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को चुनते हुए फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में जाने जाने से इनकार कर दिया। मूसा ने फसह और लहू छिड़कने का पर्व मनाया और मृत्यु दूत को इसराइल के पहिलौठों से दूर रखा। लोग लाल सागर को सूखी भूमि के समान पार करते थे। लोगों के 7 दिन तक उनके चारों ओर घूमने के बाद जेरिको की दीवारें गिर गईं। वेश्या राहब, क्योंकि उसने जासूसों का स्वागत किया था, अवज्ञाकारी लोगों के साथ नहीं मारी गई। विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह मौजूद है और वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं। जब ये सभी लोग मरे तब भी विश्वास से जी रहे थे। उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली, उन्होंने दूर से ही उन्हें देखा और उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे पृथ्वी पर परदेशी और अजनबी थे जो अपने स्वर्गीय घर की तलाश में थे। संकलक की टिप्पणी, इन उदाहरणों में से प्रत्येक में एक समान सूत्र था, विश्वास और विश्वास पर आधारित कार्य। टिप्पणी समाप्त करें। मैं और क्या कहूं, मेरे पास गिदोन, बराक, सैमसन, यिप्तह, डेविड, सैमुअल और भविष्यवक्ताओं के बारे में बताने का समय नहीं है, जिन्होंने विश्वास के माध्यम से राज्यों पर विजय प्राप्त की, न्याय किया और जो वादा किया गया था उसे प्राप्त किया, जिन्होंने सिंहों का मुंह बंद कर दिया, आग की क्रोधाग्नि शांत की और तलवार की धार से बच निकले, जिसकी कमजोरी ताकत में बदल गई और जो युद्ध में शक्तिशाली हो गए और विदेशी सेनाओं को परास्त कर दिया। स्त्रियों ने अपने मृतकों को पुनः जीवित कर लिया। दूसरों को यातना दी गई और रिहा करने से इनकार कर दिया गया ताकि वे बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त कर सकें। कुछ को उपहास और कोड़े का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य को जंजीरों से बांध दिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन पर पथराव किया गया, उन्हें 2 भागों में काटा गया, उन्हें तलवार से मार डाला गया। वे भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़कर निराश्रित, सताए हुए और दुर्व्यवहार सहते हुए घूमते रहे, संसार उनके योग्य नहीं था। वे रेगिस्तानों और पहाड़ों में और गुफाओं और जमीन के बिलों में भटकते रहे। इन सभी की उनके विश्वास के लिए सराहना की गई, फिर भी उनमें से किसी को भी अपने जीवन के दौरान वह प्राप्त नहीं हुआ जिसका वादा किया गया था। भगवान का अनुशासन। पाप के विरुद्ध अपने संघर्ष में आपने अभी तक अपना खून बहाने तक का विरोध नहीं किया है। आप प्रोत्साहन के उस शब्द को भूल गए हैं जो आपको पुत्रों के रूप में संबोधित करता है, मेरे बेटे, प्रभु के अनुशासन को तुच्छ मत समझो, और जब वह तुम्हें डांटे तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि प्रभु जिन्हें प्यार करता है उन्हें अनुशासन देता है और जिसे वह स्वीकार करता है उसे दंडित करता है। एक बेटे के रूप में कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करें, भगवान तुम्हें पुत्रों के समान मानते हैं। कौन सा पुत्र अपने पिता से अनुशासित नहीं होता? कोई भी अनुशासन उस समय सुखद नहीं बल्कि कष्टकारी लगता है। हालांकि बाद में यह उन लोगों के लिए धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करता है जिन्हें इसके द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहने और पवित्र रहने का हर संभव प्रयास करो, पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी परमेश्वर की कृपा से चूक न जाए और कोई कड़वी जड़ बढ़कर परेशानी का कारण न बने और बहुतों को अशुद्ध न कर दे। देखो कि कोई भी व्यभिचारी नहीं है या एसाव की तरह भक्तिहीन नहीं है, जिसने सबसे बड़े बेटे के रूप में अपनी विरासत का अधिकार बेच दिया। हमें एक ऐसा राज्य प्राप्त हो रहा है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आइए हम आभारी रहें और इसलिए श्रद्धा और विस्मय के साथ स्वीकार्य रूप से भगवान की पूजा करें, क्योंकि हमारा भगवान एक भस्म करने वाली आग है। एक दूसरे से भाइयों की भांति प्रेम करते रहो। अजनबियों का मनोरंजन करना न भूलें, लेकिन उन्हें नहीं जो एक अलग सुसमाचार पढ़ाते हैं और इस बात से इनकार करते हैं कि मसीह मानव शरीर में भगवान थे, क्योंकि ऐसा करके कुछ लोगों ने बिना जाने ही स्वर्गदूतों का मनोरंजन किया है। जेल में बंद लोगों, अपने ईसाई भाइयों को इस तरह याद करो जैसे कि तुम उनके साथी कैदी हो, और जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उन्हें इस तरह याद करो जैसे कि तुम स्वयं पीड़ित हो। विवाह का सम्मान सभी को करना चाहिए और विवाह बिस्तर को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि भगवान व्यभिचारी, वाचा तोड़ने वाले और सभी यौन अनैतिक, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी के साथ यौन संबंध व्यभिचार का न्याय करेंगे। अपने जीवन को पैसों के मोह से मुक्त रखें और जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें। हर प्रकार की अजीब शिक्षाओं से दूर मत जाओ। परमेश्वर को स्तुतिरूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं निरंतर चढ़ाओ। भलाई करना और दूसरों के साथ बांटना न भूलें, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपने नेताओं की आज्ञा का पालन करें और उनके अधिकार के प्रति समर्पण करें, अधिकार और चेतावनी के आगे झुकें, थायर के। वे मनुष्य आध्यात्मिक नेता के रूप में आप पर नजर रखते हैं, निर्देश नहीं देते बल्कि खतरों से आगाह करते हैं ताकि आप कार्रवाई कर सकें, जिन्हें मुख्य चरवाहे को हिसाब देना होगा। उनकी आज्ञा मानो ताकि उनका काम आनंदमय हो, बोझ नहीं, क्योंकि उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इब्रानियों से मुख्य बिंदु। पाप का छल किसी के हृदय को कठोर कर सकता है। आपने जो सुना है उस पर पूरा ध्यान दें ताकि आप भटक न जाएं। हे भाइयों, ध्यान रखो कि तुम ईसाइयों में से किसी का भी हृदय पापपूर्ण, अविश्वासी न हो जो जीवित परमेश्वर से विमुख हो जाता हो। उन लोगों के लिए यह असंभव है जो एक बार प्रबुद्ध हो चुके हैं, स्वर्गीय उपहार का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा और आने वाले युग की शक्तियों में साझा कर चुके हैं। अगर वे भटक जाते हैं तो उन्हें पश्चाताप की ओर वापस लाया जाना असंभव है। पुरानी वाचा नई वाचा में शामिल होने वाली सांसारिक छाया और प्रकार थी, इसलिए यह नई वाचा से कमतर था। यदि हमारे द्वारा सत्य सुसमाचार का ज्ञान प्राप्त करने और उसका पालन करने के बाद भी ईसाई जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने खुद को मसीह से दूर कर लिया है। किसी की आस्था और विश्वास की गहराई उसके अच्छे कार्य करने और धार्मिकता से जीने के कार्यों से पता चलती है। प्रभु उन लोगों को अनुशासित करते हैं जिनसे वह प्रेम करते हैं, क्योंकि यदि कोई इससे प्रशिक्षित होता है तो यह धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करता है।